पाठ 34 अध्याय 32 और 33। जब हम पिछली बार मिले थे, मूसा और इसराइल की नेतृत्व परिषद ने रूबेन और गाद के अनुरोध पर सहमति जताई थी कि उन्हें उस भूमि पर अधिकार करने की अनुमति दी जाए जिसे इसराइल ने मिद्यानियों से जीता था, मोआब की भूमि। यर्दन नदी के पूर्वी किनारे पर यह भूमि, जो अब आधुनिक यर्दन साम्राज्य है, रूबेन और गाद के क्षेत्रीय आवंटन बन गए। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मिद्यानियों के साथ युद्ध, जिस पर परमेश्वर ने मूसा को मुकदमा चलाने के लिए कहा था, किसी भी तरह से मोआब के कब्जे से जुड़ा था, बल्कि यहोवा का लक्ष्य उन लोगों को नष्ट करना था जिन्होंने इसराइल एक राष्ट्र के रूप में को मूर्ति पूजक महिलाओं और मूर्ति पूजक देवताओं के साथ संभोग करने के लिए प्रेरित करके व्यभिचार में धकेल दिया था। हालांकि इस विषय पर गिनती में विशेष रूप से चर्चा नहीं की गई है, लेकिन मुझे लगता है कि इसराइल को जो करना चाहिए था वह बस मिद्यानियों और उनके सहयोगी मोआब को हराना था, आगे बढ़ना था और मोआब के पूर्व राष्ट्र को खाली छोड़ना था। वहां बसना प्रभु के एजेंडे में नहीं था। मूसा इस प्रस्ताव को लेकर बहुत असहज था और भले ही रूबेन और गाद ने कनान की विजय के समय अन्य 10 इसराइली गोत्रों के साथ लड़ने के लिए अपने सबसे बेहतरीन सैनिकों को भेजने पर सहमति जताई थी, लेकिन हम देख सकते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं था। रूबेन और गाद ने जो सुझाव दिया वह अब्राहम की वाचा के अंतर्गत नहीं आता था। वे जो भूमि चाहते थे वह अब्राहम, इसहाक और याकूब को दिए गए वादे की भूमि की सीमाओं के भीतर नहीं थी, और फिर भी हम प्रभु द्वारा उन्हें नहीं कहे जाने के बारे में नहीं पढ़ते हैं। संक्षेप में, रूबेन और गाद इसराइल के शिविर के बाहर, वादा किए गए देश के बाहर रहेंगे, क्योंकि उन्हें प्रभु के प्रावधान कनान में रहने की तुलना में मोआब के भरपूर चरागाहों में अधिक लाभ दिखाई देता था। सबसे पहले खुद से यह पूछना जानकारीपूर्ण होगा कि रूबेन और गाद सभी 12 गोत्रों में से ने इस विशेष क्षेत्र को मांगने का फैसला क्यों किया। उनका तात्कालिक कारण यह था कि उनके पास बड्ढे झुंड और मवेशी थे और मोआब लगभग एकदम सही चरागाह था। लेकिन अगर हम कुछ शताब्दियों पहले वापस जाएं, जब याकूब अपने 12 बेटों को अपनी मृत्यु शैया पर आशीर्वाद दे रहा था, तो हमें कुछ सुराग मिलते हैं और यह इस तथ्य से शुरू होता है कि रूबेन को अनिवार्य रूप से त्याग दिया गया था। याकूब के ज्येष्ठ पुत्र रूबेन को ज्येष्ठ पुत्र के पारंपरिक अधिकार नहीं दिए गए, क्योंकि रूबेन ने अपने पिता की एक रखैल के साथ यौन संबंध बनाए थे। याकूब ने कहा कि रूबेन पानी की तरह अस्थिर था और इसलिए कभी भी श्रेष्ठ नहीं होगा। रूबेन के पास अच्छा करने के लिए सभी शारीरिक गुण और बुद्धिमत्ता और लाभ थे, लेकिन उसके पास नैतिकता और चरित्र की ताकत की कमी थी। और समय के साथ हम देखेंगे कि रूबेन ने हमेशा घूमते रहने की खानाबदोश जीवन शैली को अधिक स्थिर और गतिहीन जीवन शैली के बजाय पसंद किया। याकूब द्वारा अपने पुत्रों को दिए गए आशीर्वाद को याद करते समय, यद्यपि यह हमारे आधुनिक मन के लिए बहुत ही अविश्वसनीय लगता है, यह समझें कि प्रत्येक भविष्य सूचक आशीर्वाद किसी एक पुत्र पर उतना नहीं था जितना कि उस बेटे के भावी वंशज। यह उन हजारों लोगों पर भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी के रूप में ज्यादा अभिप्रेत था जो उस बेटे के नाम पर व्यक्तिगत रूप से नामित गोत्र के सदस्य होंगे। याकूब अपने प्रत्येक बेटे से उत्पन्न होने वाली गोत्रों की नियति का उच्चारण कर रहा था। वह उन विशेषताओं का उच्चारण कर रहा था जो इनमें से प्रत्येक गोत्र विकसित करेगी, और वे विशेषताएं उसके बेटों की पहले से विकसित और प्रदर्शित विशेषताओं का विस्तार मात्र थीं। रूबेन की अस्थिरता की विशेषता सदियों से उसके गोत्र में फैलती और महसूस होती रही, और यही वह बात है जिसने रूबेन के गोत्र को वादा किए गए देश से बाहर रहने का मूर्खतापूर्ण चुनाव करने के लिए प्रेरित किया, मोआब में रहने के पक्ष में एक ऐसा देश जो परमेश्वर के लोगों के लिए अलग नहीं किया गया था। समय के साथ साथ रूबेन का नाम इसराइल के इतिहास में कम होता गया। वास्तव में कुछ बाइबल इतिहासकारों का दावा है कि शाऊल के समय तक रूबेन को गाद के गोत्र में शामिल कर लिया गया था और वह गायब हो गया। बाइबल के अन्य लेख रूबेन के लिए इतने गंभीर परिणाम का समर्थन नहीं करते हैं, बल्कि हम पाते हैं कि रूबेन के गोत्र ने बेडोइन की जीवन शैली अपनाई और ट्रांस यर्दन के रेगिस्तानी इलाकों में अपने झुंड और पशुओं के साथ घूमते रहे। तकनीकी रूप से रूबेन के पास अभी भी क्षेत्र था और उन्होंने अपनी जनजातीय पहचान बनाए रखी, लेकिन व्यावहारिक रूप से उन्होंने अपने क्षेत्र पर शासन नहीं किया या इसके भीतर बुनियादी ढांचा नहीं बनाया या इसकी रक्षा नहीं की, इसलिए उनका क्षेत्र अधिक से अधिक गाद के गोत्र के प्रभाव में आ गया। बेडोइन के रूप में रूबेन को क्षेत्र को नियंत्रित करने में बहुत अधिक रुचि नहीं थी। गाद का भाग्य रूबेन से थोड़ा अलग था। याकूब ने गाद को सबसे छोटा आशीर्वाद दिया और यह वास्तव में एक बहुत ही अजीब आशीर्वाद था। आशीर्वाद था गाद, एक सेना उस पर हमला करेगी लेकिन वह उनकी एड़ी पर हमला करेगा। सुनने में गोबिल्डी गूक जैसा लगता है ना? हालांकि गाद शब्द इब्रानी मूल गेदुद, एक संज्ञा जिसका अर्थ सेना है, और इससे जुरी क्रिया येगुडेनु जिसका अर्थ है छापा। गाद पर याकूब द्वारा दिया गया यह आशीर्वाद शब्दों के खेल के रूप में दर्ज किया गया था। यह एक सैन्य बल के रूप में गाद के भविष्य और इस तथ्य के बारे में है कि उन्हें अपने स्थान के कारण अपने पूरे जीवन दुश्मनों से लड़ना होगा। गाद पर याकूब की घोषणा का बेहतर अनुवाद इस प्रकार है, गाद एक सेना उस पर हमला करेगी लेकिन वह गाद उनकी एरी पर हमला करेगा। दूसरे शब्दों में गाद योद्धाओं का एक कबीला होने वाला था और उनका रवैया काफी आक्रामक होगा। वे आवश्यकता के कारण सैन्य उन्मुख होंगे। दुश्मन लगातार गाद को परेशान करते रहते थे लेकिन अंत में वे आम तौर पर जीत जाते थे। और इस 500 साल पुराने आशीर्वाद के अनुसार गाद जंगल में लड़ाकों की एक बहुत ही बहादुर और प्रभावशाली गोत्र बन गई थी। यही एक कारण है कि मूसा ने गाद गोत्र के सैनिकों को कनान में इसराइल के साथ जाने पर जोर दिया। इसके अलावा रूबेन और गाद शिमोन के साथ इसराइल के चार दलों में से एक थे। वे तंबू के दक्षिण की ओर एक साथ डेरा डाले हुए थे। रूबेन और शिमोन भाई थे, उनकी मां लिया थी जो याकूब की पहली पत्नी थी। गाद लिया की दासी जिल्पा का बेटा था, इसलिए इन तीनों के बीच एक स्वाभाविक रिश्ता था। अब प्रभु के दिव्य विधान में भले ही रूबेन और गाद को कभी भी वहां बसने का इरादा नहीं था, जहां वे बसे उन्होंने अन्य जनजातीय क्षेत्रों जो वादा किए गए देश के अंदर स्थित होंगे जैसा कि उन्हें माना जाता था, को पूर्व से आने वाले अनगिनत आक्रमणकारियों से बचाने के लिए सुरक्षा का एक साधन, एक तरह का रक्षात्मक बफर प्रदान किया। रूबेन और गाद को कई लुटेरों का खामियाजा भुगतना पड़ा जो इसराइल के अन्य गोत्रों तक पहुंचने के लिए उनके क्षेत्र से गुजरना चाहते थे। पद 16 की शुरुआत महत्वपूर्ण है क्योंकि अंग्रेजी में बातचीत का लहजा खो जाता है। यह खंड शुरू होता है और फिर वे उसके मूसा के पास आए या आगे बढ़े और कहा, ऊपर आए या आगे बढ़ने के लिए इब्रानी शब्द व यिगेशु है और इसका अर्थ है किसी से नरम या अंतरंग तरीके से विनती करना। दूसरे शब्दों में रूबेन और गाद के नेता यह मांग नहीं कर रहे थे कि वे रुकें या आगे जाने से इनकार करें, बल्कि वे अपने घरों के लिए मोआब के क्षेत्र को प्राथमिकता देने के अपने तर्क को स्पष्ट करना चाहते थे और फिर एक ऐसा प्रस्ताव देना चाहते थे जो दूसरों और प्रभु को संतुष्ट करे और इसराइल और अब्राहम और मूसा की वाचाओं के प्रति उनकी इच्छित निरंतर वफादारी दिखाए। उन्होंने जो पेशकश की थी वह यह थी कि अगर उन्हें ट्रांस यर्दन में बसने की अनुमति दी गई तो वे अपने जानवरों के लिए एक जगह बनाएंगे और वे अपने परिवारों के लिए शहर बनाएंगे। हालांकि वे कनान में आगे बढ़ने और इसराइल के अन्य गोत्रों के साथ लड़ने के लिए एक बड़ी सैन्य टुकड़ी भी प्रदान करेंगे, जिस तरह की विशेष सेना की पेशकश की जा रही है उसके लिए इब्रानी शब्द नेचलात है। शाब्दिक रूप से इसका मतलब है चुना हुआ या विशेष रूप से चुना हुआ। विचार यह है कि ये सबसे भयंकर लड़ाके हैं, सबसे अच्छे हैं। इसके अलावा रूबेन और गाद के ये सैनिक इजरायली सेना के अग्रिम मोर्चे होंगे क्योंकि यह कनान के माध्यम से लड़ेगा और जीत हासिल करेगा। सौदा यह है कि ये नेचलात ट्रांस यर्दन में अपने आदिवासी क्षेत्र में
तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक कि हर इजरायली गोत्र के पास कनान में अपनी जमीन नहीं हो जाती। वे तब तक वहीं रहेंगे और अपने भाइयों से लड़ेंगे जब तक कि ऐसा करना जरूरी ना हो। इसके अलावा वे वादा किए गए देश में यर्दन के पश्चिमी किनारे पर अतिरिक्त क्षेत्र की मांग नहीं करेंगे। वे यर्दन के पूर्व में ही रहने से संतुष्ट होंगे क्योंकि यह उनकी अपनी पसंद है। मूसा निःसंदेह नेतृत्व परिषद की स्वीकृति से इस प्रस्ताव से सहमत हो जाता है।
आइए अध्याय 32 का एक भाग पुनः पढ़ें। गिनती अध्याय 32 का 25 को पुनः पढ़ें अंत तक।
तो यहां हम देखते हैं कि सबसे बड़ी इजरायली गोत्र मनुष्य के लगभग आधे लोगों ने फैसला किया कि वे भी ट्रांस यर्दन क्षेत्र में रहना चाहते हैं, शायद उन्हीं कारणों से जो रूबेन और गाद चाहते थे। अब जबकि इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, यह एक बहुत ही दर्दनाक और विवादास्पद मामला रहा होगा। एक गोत्र के लिए इस तरह से खुद को विभाजित करना, इसका मतलब था कि इसे बनाने वाले कुलों के बीच बहुत असहमति थी और यह एक बहुत ही गंभीर स्थिति थी। इसका यह भी मतलब था कि दो लोग मनुष्य की गोत्र के शीर्ष कुत्ते राजकुमार नासी के लिए हौर कर रहे थे और निस्संदेह गोत्र का यह विभाजन, जिसमें एक हिस्सा यर्दन के पूर्वी किनारे पर रहता था और दूसरा हिस्सा यर्दन के पश्चिमी तट पर रहता था, असहमति के शांतिपूर्ण समाधान के लिए केंद्रीय था।
हमें इस बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया है कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन इस बिंदु से आगे हम बाइबल में 31:2 गोत्रों के बारे में बात करते हुए सुनना शुरू करेंगे जो यर्दन के पूर्वी किनारे पर रहे। इसका सीधा सा मतलब है कि दो पूरे गोत्रों अर्थात रूबेन और गाद के सभी कुल और मनुष्य के गोत्र का आधा, मनुष्य का गठन करने वाले कई कुलों में से लगभग 1/2 ने ट्रांस यर्दन में बसने का फैसला किया। शेष कुलों ने मनुष्य के गोत्र के दूसरे आधे हिस्से का गठन किया और इसराइल के अन्य गोत्रों के साथ कनान में जाकर उसे जीत लिया और बस गए। रूबेन सीधे मृत सागर के पूर्वी तट पर बस गए, जबकि गाद यर्दन नदी के पूर्व में एक क्षेत्र में रहते थे और आम तौर पर गलील सागर के दक्षिणी छोर और मृत सागर के उत्तरी छोर के बीच स्थित थे। मनुष्य की 1/2 गोत्र उस भूमि पर बस गई जो गलील सागर के दक्षिणी छोर से शुरू होकर उत्तर में माउंट हरमोन तक फैली हुई थी। यह सब तुरंत नहीं हुआ, सीमाओं को आकार लेने में कुछ साल लग गए, लेकिन फिर भी प्रत्येक क्षेत्र की बनावट समय और राजनीतिक परिस्थितियों के साथ उतार चढ़ाव करती रही। जैसा कि उस युग में प्रथा थी, इन तीन इजरायली गोत्रों ने मिद्यान के साथ युद्ध में नष्ट किए गए कुछ शहरों का पुनर्निर्माण किया, शहर के नाम बदलकर इब्रानी शहर के नाम रख दिया और वहां बस गए। कहीं और नए सिरे से शुरू करने के बजाय एक शहर का पुनर्निर्माण करने के कई कारण हैं, लेकिन सामान्य तौर पर यह है कि एक शहर हमेशा एक अच्छे जल स्रोत के पास स्थित होता था और पानी हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं था। खा आम तौर पर प्रत्येक शहर और शहर तक सड़कें और रास्ते बनाए गए थे जहां व्यापारी और सौदागर अपनी जरूरत का सामान लाते थे, और गे सबसे स्पष्ट कारण यह था कि पिछले शहर की निर्माण सामग्री नए शहर के निर्माण के लिए फिर से इस्तेमाल के लिए तैयार पड़ी थी। चूंकि अधिकांश निर्माण पत्थर से हुआ था, इसलिए आम तौर पर पत्थरों को फिर से ढेर करने का ही मामला था। आप में से जो लोग मेरे साथ इसराइल गए हैं, उन्होंने दर्जनों विशाल मिट्टी के टीले देखे हैं जिन्हें टेल्स कहा जाता है, जो पूरे देश में बिखरे हुए हैं। ये टेल्स प्राचीन शहरों के अवशेष हैं जो कभी वहां मौजूद थे, लेकिन अब सदियों से चली आ रही हवा और बारिश के कारण कई फीट मिट्टी और मलबे से ढके हुए हैं। बात यह है कि हर टेल परतों की एक प्रणाली है और एक परत केक की तरह दिखने वाला प्रत्येक परत एक समृद्ध शहर का प्रतिनिधित्व करती है जिसे नष्ट कर दिया गया था। इसके ठीक ऊपर की परत अगले शहर का प्रतिनिधित्व करती है जिसे सीधे पहले नष्ट हुए शहर पर बनाया गया था, जिसमें उसके अधिकांश मलबे और निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था। कभी कभी एक टेल में 18 या 20 परतें होती हैं, यानी 18 या 20 शहर जिनमें से प्रत्येक पहले वाले के अवशेषों पर बना है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि मोआब में इसराइल की सेना ने जिन शहरों को नष्ट किया था वे पहले से ही और भी पुराने शहरों के खंडहरों पर बने थे, और अब रूबेन, गाद और मनश्शे बस यही प्रक्रिया दोहराएंगे, जिससे कई टेल्स में एक और परत जुड़ जाएगी, और उनके बाद अन्य सभ्यताएं भी ऐसा ही करेंगी। इसलिए गिनती 32 में देखे गए इन शहरों के नामों की पहचान करना हमारे समय में काफी मुश्किल है, क्योंकि ये नाम केवल तब तक ही मौजूद थे जब तक कि वह शहर नष्ट नहीं हो गया। उस पर बने अगले नए शहर को आमतौर पर एक नया नाम दिया गया था, हालांकि अक्सर यह वही नाम होता था, बस एक अलग भाषा में। आइए अध्याय 33 पर चलते हैं। गिनती अध्याय 33 पूरा पढ़ें। यहां हमारे पास जंगल में इजरायलियों की यात्रा का संक्षिप्त यात्रा विवरण है, और हम इससे उनके मार्ग के अलावा भी कई बातें सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए हम पाते हैं कि भले ही पहले के अंशों में कहा गया है कि इसराइल ने फसह के दिन मिस्र छोड़ा था, लेकिन यह तकनीकी रूप से सही नहीं है, क्योंकि हमें बताया गया है कि उन्होंने निसान 15 को मिस्र छोड़ा था, जो अख़मीरी रोटी के पर्व फसह के अगले दिन का पहला दिन है। हालांकि जैसा कि मैंने पिछले पाठ में समझाया था, हम जल्द ही देखेंगे कि फसह और मत्ज़ाहा के बाइबिल के पर्व इस तरह से जुड़ जाते हैं कि दोनों एक ही रूप में मनाए जाते हैं, और पूरे उत्सव को बारी बारी से फसह या मत्ज़ाह कहा जाता है। मुझे इसे फिर से कहने की अनुमति दें, क्योंकि यह कुछ विद्वानों और पादरियों और बाइबल के छात्रों को यह निष्कर्ष निकालने में होने वाली कठिनाइयों को समझने में मदद कर सकता है कि यह कौन सा दिन था जब ईसा को क्रूस पर चढ़ाया गया था। परमेश्वर के धर्मशास्त्रीय आदेश के अनुसार फसह एक एक दिवसीय त्योहार था, जो निसान के इब्रानी महीने की 14 तारीख को मनाया जाना था। अख़मीरी रोटी का पर्व 7 दिवसीय त्योहार था, जो फसह के अगले दिन निसान की 15 तारीख को शुरू होना था। इसलिए फसह एक दिन और अख़मीरी रोटी 7 दिन एक साथ मिलकर लगातार 8 दिनों का भोज है, लेकिन वास्तव में ये दो अलग अलग पर्व हैं जो केवल लगातार चलते हैं। मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी भी बताना चाहता हूं। मूल मिस्री फसह का आयोजन जिस तरह से किया जाता था, और मिस्र छोड़ने के बाद और भविष्य के समय में फसह का आयोजन जिस तरह से किया जाता था, वह कुछ अलग था। एक बात यह है कि मिस्र में फसह के मेमने को भले ही निसान के 14वें दिन मार दिया जाता था और उसके खून को घरों के दरवाजों पर लगाया जाता था, लेकिन फसह के मेमने को कुछ घंटों बाद अंधेरा होने के बाद ही खाया जाता था, जिसका मतलब है कि अब एक नए दिन निसान 15 की शुरुआत हो चुकी थी। याद करें कि एक दिन के अंत और नए दिन की शुरुआत का निर्धारण करने का बाइबल का तरीका सूर्यास्त था। इसीलिए मिस्र में निसान 14 के दिन के दौरान मेमने को काटा जाता था और पकाने की प्रक्रिया शुरू होती थी, और फिर अंधेरा होने के बाद, जो कि अगला दिन होता है, वे इसे खाते थे। समझने वाली दूसरी बात यह है कि तकनीकी रूप से निसान 14 को फसह कहा जाता है, और इसी दिन मेमने को बलि चढ़ाया गया और तैयार किया गया, लेकिन प्रभु ने मिस्र के पहलौठों को तब तक नहीं मारा जब तक कि इब्रानियों ने फसह का मेमना नहीं खा लिया। इसलिए चूंकि सूर्यास्त के समय दिन बदल गया था लगभग 7 बजे, इसलिए मिस्र के पहलौठों को निसान 15 को सुबह सुबह मार दिया गया, जो उसके बाद 7 दिवसीय बाइबिल के अख़मीरी रोटी मत्ज़ाह के त्योहार का पहला दिन बन गया। फिर अगली सुबह जब निसान की 15 तारीख ही थी, इब्रानियों ने इकट्ठा होकर मिस्र छोड़ दिया। ये उससे थोड़ा अलग है जैसा हम आमतौर पर सोचते हैं, लेकिन ऐसा ही हुआ। निर्गमन की पुस्तक को पढ़ाने में मैंने इसे अधिक सरल शब्दों में पढ़ाया है, उस शब्दावली का प्रयोग करते हुए जिसे चर्च निर्गमन के साथ सबसे अधिक सामान्य रूप से जोड़ता है, अर्थात बोलने का सामान्य तरीका कि फसह के पर्व में मेमने के खून को दरवाजों की चौखटों पर लगाया गया, मेमने को खाया गया, प्रभु ने मिस्र के पहलौठों को मारा और इसराइल ने मिस्र छोड़ दिया। अब इस कारण का एक हिस्सा कि चर्च ने पहली बार मिस्र के फसह को इस तरह से प्रस्तुत किया, भले ही तकनीकी रूप से यह थोड़ा अलग हो, संभवतः भ्रमित गैर यहूदी विद्वानों, जो विशेष रूप से यहूदी रब्बियों द्वारा कही गई किसी भी बात को सुनना नहीं चाहते थे, के कारण है, जो यह नहीं समझ पाए कि ए भविष्य के सभी फसहों की तुलना में
थोरा अलग मिस्र का फसह था, बी कि फसह और अखमीरी रोटी के पर्व के निर्गमन, लैव्य व्यवस्था और यहां तक कि गिनती के प्रोटोकॉल को व्यवस्था विवरण में संशोधित किया गया और फिर परंपराओं की स्थापना द्वारा और संशोधित किया गया, सी बी के परिणाम स्वरूप फसह के दिन बनाम मत्ज़ा के पर्व के दिनों की तकनीकी शास्त्रीय परिभाषाएं एक बात है, लेकिन उनके बारे में बोलने का सामान्य यहूदी तरीका क्या था और यहूदियों ने उन्हें कैसे गिना और उन्होंने उन्हें क्या कहा, यह पूरी तरह से कुछ और था। और डी अंततः फसह और मत्ज़ा के पर्व को कैसे मनाना है, इस बारे में कई अलग अलग परंपराएं उठी और वे सभी एक साथ घटित हो रही थी।
सामान्यतः एक परंपरा का प्रयोग यहूदिया में रहने वाले यहूदियों द्वारा किया जाता था, दूसरी का प्रयोग सामरिया में रहने वाले यहूदियों द्वारा किया जाता था जो यरूशलेम मंदिर से अलग हो गए थे और अपना स्वयं का मंदिर बनाया था, तीसरी का प्रयोग गलील में रहने वाले यहूदियों द्वारा किया जाता था क्योंकि उन्हें यरूशलेम मंदिर तक पहुंचने के लिए बहुत दूर यात्रा करनी पड़ती थी, और तीसरी परंपरा का प्रयोग डायस्पोरा में रहने वाले यहूदियों द्वारा किया जाता था, अर्थात पवित्र भूमि से बाहर रहने वाले यहूदी जो मूर्ति पूजक अन्य जातियों और यहूदियों के बीच रहने के बारे में बताते थे। कभी कभी समारोहों के लिए यरूशलेम के मंदिर तक पहुंचने के लिए असंभव दूरी तय करनी पड़ती है।
मेरा यहाँ विषय से भटकने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन कभी हम फसह के बारे में चर्चा करेंगे जैसा कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय हुआ था, और मैं यह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि किस दिन उनकी मृत्यु हुई और यहां तक कि क्या प्रभु का भोज फसह का सेडर भोजन था या कुछ और, इस वास्तविकता के साथ कि मिस्र के फसह और किस दिन में जो क्रम हुआ उसका पालन बाद के फसहों में नहीं किया गया, यीशु के दिनों में फसह मनाने के तरीके के बारे में कई परस्पर विरोधी परंपराएं भी थीं, साथ ही आम रोजमर्रा की यहूदी शब्दावली का उपयोग जो सुसमाचार के वृत्तांतों में किया जाता है और पर्व के दिनों की तकनीकी अनुष्ठान शब्दावली जैसा कि तोरह में पाया जाता है का उपयोग नहीं किया जाता है, जिसे एक साथ लेने पर समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा समकालिक सुसमाचार यूहन्ना के सुसमाचार से मेल नहीं खाते हैं, हालांकि यह तब समझ में आता है जब हम समझते हैं कि समकालिक सुसमाचार गैलीलियन यहूदियों उनकी अपनी फसह परंपराओं के साथ के दृष्टिकोण से थे, लेकिन आम तौर पर यह माना जाता है कि प्रेरित यूहन्ना जिन्होंने यूहन्ना का सुसमाचार लिखा था गैलीलियन मछुआरे के रूप में जीवन शुरू करने के बाद यहूदिया यहूदी बन गए थे या यहूदी परंपरा उनकी अपनी अलग फसह परंपराओं के साथ को व्यक्त कर रहे थे, लेकिन यह अपने आप में एक लंबा और जटिल पाठ है, इसलिए आइए इसे किसी और समय लें। अतः गिनती 33 के यात्रा वृत्तांत का आरंभिक बिंदु मिस्र में रामसेस गोशेन देश में है, और जिस दिन उन्होंने मित्र 14 वह इब्रानी अनुष्ठान कैलेंडर वर्ष के पहले महीने का 15वां दिन था, याद रखें इब्रानी लोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए कई अलग अलग कैलेंडर का उपयोग करते थे और इस महीने को निसान कहा जाता था। हमें केवल एक और तारीख दी गई है, हारून की, जो जंगल में 40वें वर्ष के 5वें महीने के पहले दिन महायाजक की मृत्यु थी और यह माउंट होर पर हुई थी। इसका मतलब है कि हारून की मृत्यु की तारीख से लेकर इसराइल के मोआब तक पहुंचने तक बहुत कम समय बीता, फिर बालाम की घटना, फिर मिद्यान युद्ध जो शायद कुछ ही दिनों तक चला, और फिर मूसा की मृत्यु हुई संभवतः 3 या 4 महीने या उससे अधिक का अंतराल।
और हमें बताया गया है कि मूसा को इस यात्रा कार्यक्रम को लिखने का निर्देश दिया गया था। अब ऐसा करने का उद्देश्य क्या था, क्योंकि तोरह इसे हमारे जाने के दौरान रिकॉर्ड कर रहा है, हम केवल अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि हमें नहीं बताया गया है। वास्तविकता यह है कि अगर हम पीछे जाएं और उन स्थानों के नाम की जांच करें जहां इजरायलियों ने डेरा डाला था, जिनके बारे में हमने अब तक देखा है, तो हम पाएंगे कि गिनती 33 में यह सूची मेल नहीं खाती। हम पाएंगे कि कुछ स्थानों के नाम गायब हैं और अन्य जोड़े गए हैं। जब हम उन्हें गिनते हैं तो हम पाते हैं कि 42 स्टेशन, वे स्थान जहां वे रुके थे और कुछ या कुछ और हुआ था, गिनती 33 में सूचीबद्ध हैं।
इसलिए कुछ विद्वानों ने गिनती 42 में महत्व खोजने की कोशिश की है। मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा कुछ है। अगर हम ध्यान से देखें तो हम बाइबल में गिनती 42 के अन्य उपयोग पा सकते हैं, जैसे कि अंतिम समय में 7 साल की अवधि, जिसे ईसाई क्लेश कहते हैं, जिसे 240 महीने की अवधि में विभाजित किया गया है। यहां तक कि यीशु की वंशावली के मत्ती संस्करण में भी 42 पीढ़ियां हैं। लेकिन गिनती 42 के इन सभी विभिन्न उपयोगों को झोरने वाले कुछ सामान्य धार्मिक तार को खोजना काफी कठिन होगा और मैं इसे नहीं देख पा रहा हूं। शायद भविष्य में कभी प्रभु मेरी आंखें खोल देंगे उस संबंध में, जो मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूं। कम से कम ज्यादातर विद्वान और रब्बी इस बात पर सहमत हैं कि हमारे पास उन स्थानों की सूची है जहां से इसराइल गुजरा और जहां कुछ महत्वपूर्ण हुआ। कुल मिलाकर यह भविष्य के पाठकों को इसराइल की कठिन यात्रा की याद दिलाता है और कैसे प्रभु ने विभिन्न बिंदुओं पर उन्हें निर्देश दिए, उन्हें दंडित किया, उनके लिए प्रावधान किए, उनमें से कुछ को नष्ट कर दिया और उनमें से अधिकांश को बचाया। यह इस बात की याद दिलाता है कि मिस्र की पकड़ से बचने और उस भूमि पर दावा करने के लिए उन्हें कितना कुछ सहना पड़ा जिसे प्रभु ने उनके लिए अलग रखा था। और मुझे लगता है कि इसने अपना उद्देश्य हासिल कर लिया है, क्योंकि मैं इसराइल के इतिहास में किसी ऐसी बड़ी घटना, उत्थानकारी प्रकृति की घटना के बारे में नहीं सोच सकता जो मिस्र से उनके पलायन से ज्यादा हर यहूदी के मन और आत्मा में अंकित हो।
अब इन 42 स्थानों में से केवल कुछ ही ऐसे हैं जो आज कुछ हद तक निश्चित रूप से जाने जाते हैं। परिणाम स्वरूप पलायन के विभिन्न मार्गों को दर्शाने वाले कई मानचित्र हैं और मुझे नहीं लगता कि इससे निपटने के लिए हमारे पास समय होना चाहिए, क्योंकि इन मानचित्रों में गलती से इसराइलियों को मूल रूप से सिनाई के आसपास घूमते हुए दिखाया गया है, जिसमें सिनाई प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे की ओर माउंट सिनाई का पारंपरिक ईसाई स्थान उनकी यात्रा का केंद्र है। तथ्य यह है कि सिनाई कभी भी 3,000 इसराइलियों के समूह का समर्थन नहीं कर सकता था, 3 मिलियन की तो बात ही छोड़िए, इसलिए मैं इसे नहीं मानता।
पारंपरिक यात्रा कार्यक्रम के अनुसार पलायन का समर्थन करने वाले पुरातात्विक साक्ष्य का एक टुकड़ा भी नहीं है। पलायन के मार्ग के मुद्दे पर इतने सारे ईसाई विद्वानों का लंबे समय से कायम और अरियल रुख ही मुख्य कारण है कि हमारे पास इतने सारे धर्मनिरपेक्ष विद्वान और यहां तक कि अधिक उदार ईसाई विद्वान हैं जो इस बात पर भी संदेह करते हैं कि पलायन हुआ था, क्योंकि वे गलत स्थानों पर पलायन की कलाकृतियों की तलाश करने पर जोर देते हैं।
मुझे यथोचित रूप से यकीन है कि असली माउंट सिनाई अरब में है, एक समय में मिद्यान के कब्जे वाले क्षेत्र में, क्योंकि बाइबल में ठीक यही बताया गया है कि यह वही है। और फिलो और जोसेफस जैसे प्रसिद्ध लोगों का भी कहना है कि यह स्थान अरब में है और उन्हें हमसे बेहतर पता होना चाहिए। मिद्यान के पूर्व क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी अरब प्रायद्वीप पर में कई कलाकृतियां पाई गई हैं जो इब्रानी संस्कृति और उस समय अवधि और माउंट सिनाई की भौगोलिक विशेषताओं के बाइबल विवरण से मेल खाती है। और स्थानीय अरब लोक कथाओं का खजाना भी है जो इसका समर्थन करता है। सिनाई प्रायद्वीप के लिए ऐसी कोई लोक कथा या परंपरा मौजूद नहीं है। जैसे ही हम पद 50 पर पहुंचते हैं, गिनती 33 की दर्ज यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है, मोआब के मैदानों में एबेल शित्तीम। और यहीं पर प्रभु परमेश्वर ने मूसा को सामान्य निर्देश दिए थे कि इसराइलियों को कनान पर विजय कैसे प्राप्त करनी है। संक्षेप में उन्हें उन सभी लोगों को बाहर निकालना है जो वर्तमान में वहां रहते हैं, फिर इसराइल को अपनी सभी मूर्तियों और मूर्ति पूजा के सामान को नष्ट करना है। जहां कहीं भी मूर्ति पूजक देवता के लिए कोई वेदी या मंदिर या उच्च स्थान बनाया गया है उसे गिरा दिया जाना चाहिए। स्पष्ट रूप से कहें तो कनान को उसके लोगों से खाली किया जाना है। प्रभु उन्हें अब वहां नहीं चाहते। कनानियों के घृणित धर्म को उखार फेंका जाना है और उसके सभी बचे हुए लोगों को खत्म कर दिया जाना है। प्रभु ने नरसंहार का आदेश नहीं दिया है, लेकिन यह समझा जाता है कि जो लोग इसराइलियों के कब्जे का विरोध करते हैं युद्ध में सैनिक, या जो युद्ध जीतने के बाद छोड़ने से इनकार करते हैं, उन्हें मार दिया जाना चाहिए। निर्देश में यह भी निहित है एक लंबे समय से स्थापित ईश्वर सिद्धांत कि जो कोई भी अपने झूठे देवताओं को त्याग देगा और इसराइल में शामिल हो जाएगा, उसका ऐसा करने का स्वागत है।
किसी भी परिस्थिति में इसराइलियों को किसी विदेशी जाति या गोत्र को इसराइल से अलग रहने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसराइल से अलग लोगों को अलग करो, न ही कनान देश में यहोवा के अलावा किसी अन्य देवता की पूजा की जा सकती है। कृपया आगे से निर्देशों के इस सेट को ध्यान में रखें, क्योंकि जब हम परमेश्वर के निर्देशों को संशोधित करने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि यह हमारी मानवीय राजनीतिक रूप से सही संवेदनाओं के लिए अधिक दयालु या निष्पक्ष या प्रेमपूर्ण या सहनशील लगता है, तो यह विद्रोह है, सरल और स्पष्ट रूप से, और इसका परिणाम विनाश होगा।
इसके बाद आयत 54 में इसराइली गोत्रों के बीच भूमि का बंटवारा करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन रुकिए, क्या प्रभु ने पहले से ही यही निर्देश नहीं दिए हैं? हाँ और नहीं। गिनती अध्याय 26 में भूमि के बंटवारे के बारे में गोत्रों की जनगणना करने के संदर्भ में बात की गई थी, जो प्रत्येक गोत्र के आकार के अनुसार भूमि को विभाजित करने के लिए एक अग्रदूत था। लेकिन तब भूमि को विभाजित करने के लिए 12 गोत्रों थी, अब केवल 9 गोत्रों और मनश्शे के गोत्र का आधा हिस्सा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि रूबेन और गाद और मनश्शे के एक बटा दो लोगों को यर्दन नदी के पूर्वी किनारे पर बसने की अनुमति मिली थी, और ऐसा करके उन्होंने वादा किए गए देश के अंदर किसी भी क्षेत्र के अधिकार को छोड़ने की पेशकश की थी। अध्याय 33। परमेश्वर की ओर से इसराइल को दी गई एक भयंकर चेतावनी, जिसे वैसे तो गंभीरता से नहीं लिया गया, के साथ समाप्त होता है कि यदि वे कनान को लेने के लिए इस्तेमाल की गई विधि के बारे में परमेश्वर के निर्देशों का ठीक से पालन नहीं करेंगे तो बुरी चीजें घटित होंगी। मैं आपको अध्याय 33 के अंतिम दो पद उद्धृत करना चाहता हूं, गिनती 33:55। परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों अपने आगे से न निकाल दोगे, तो जिन लोगों को तुम उनमें से रहने दोगे, वे तुम्हारी आंखों में चुभन और तुम्हारे पांजरों में कांटे बनेंगे, और जिस देश में तुम रहोगे उसमें वे तुम्हें कष्ट देंगे। 56। और ऐसा होगा कि जैसा मैं उनसे करने की योजना बना रहा हूं, वैसा ही मैं तुमसे भी करूंगा।
इसराइल ने कभी इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया, यहोशू ने नहीं, दाऊद ने नहीं, यहां तक कि आधुनिक इसराइल ने भी नहीं, जो 1900 साल के निर्वासन के बाद अपने वतन वापस लौटा है, उसने भी इस ईश्वरीय निर्देश का पालन नहीं किया है। यह अभी भी विदेशियों को, जो इसराइल में शामिल नहीं हैं, वहां रहने की अनुमति देता है। यह मूर्ति पूजक धर्मों, विशेष रूप से इस्लाम को, यहोवा की पूजा के साथ साथ अस्तित्व में रहने की अनुमति देता है। यह अपने दुश्मनों को अपने शासी निकाय नेसेट में स्थान भी देता है। यह नास्तिकता को अनुमति देता है और बढ़ावा देता है। यह समलैंगिकता को अनुमति देता है और बढ़ावा देता है। यह यहोवा के पूर्व निवास स्थान के मंदिर के मैदानों को नियंत्रित करने वाले मुसलमानों को अनुमति देता है और उनका बचाव भी करता है। लेकिन इससे भी बदतर यह है कि यह शांति के अधूरे वादों के लिए वादा किए गए देश के कुछ हिस्सों को अपने दुश्मनों को दे देता है, भूमि जिसके बारे में शास्त्र कहते हैं कि उसे इसे निपटाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वे इसके मालिक नहीं हैं, परमेश्वर इसके मालिक हैं। जब तक इसराइल इन प्रथाओं को बंद नहीं कर देता, निर्देशानुसार भूमि को सुरक्षित नहीं कर लेता, प्रभु के पास वापस नहीं लौटता और पश्चाताप नहीं करता, तब तक हमेशा युद्ध, आतंकवादी, आत्मघाती, बम विस्फोट और कुछ लोगों का समूह या अन्य लोग रहेंगे जो इसराइल को दुखी बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। वैसे यहां कोई भी व्यक्ति जानबूझकर इस पर अपना सिर न हिलाए और न ही सोचे कि इसराइल कितना मूर्ख हो सकता है, क्योंकि हमारे व्यक्तिगत जीवन में अधिकांश समस्याएं परमेश्वर के राज्य के सदस्यों के रूप में, वह इकाई जिसे संत पौलुस परमेश्वर के इसराइल या सच्चे इसराइल के रूप में संदर्भित करता है, इसलिए हैं क्योंकि हम अपने जीवन को निर्देशानुसार सुरक्षित नहीं रखते हैं, हम प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते और पश्चाताप नहीं करते हैं, और इसलिए हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। दुखी बना दिया वैसे वह भूमि जिसे प्रभु ने इज़राइल के लिए अलग रखा था, वह भूमि जिसे इज़राइल जल्द ही जीत लेगा और यहोशू के नेतृत्व में उस पर कब्जा कर लेगा, वह पश्चिमी तट है। क्या यह नाम जाना पहचाना लगता है? यह सही है, वह भूमि जिसे हमारा वर्तमान प्रशासन इज़राइल से अपने शत्रुओं को देने की मांग करता है, पश्चिमी तट, वही भूमि है जिसके बारे में प्रभु ने कहा था कि वह इज़राइल और केवल इज़राइल के लिए है। इज़राइलियों ने उस भूमि के बारे में प्रभु के स्पष्ट निर्देशों का पालन करने से इनकार करने के लिए 3,300 वर्षों तक एक भयानक कीमत चुकाई है, और किसे उस पर कब्जा करने और रहने की अनुमति है? क्या आपको लगता है कि अमेरिका जैसे वे राष्ट्र जो इस बात पर जोर देते हैं कि इज़राइल उन निर्देशों की अवहेलना करता रहे, परमेश्वर के क्रोध से बच जाएंगे? चर्च के लगभग 50% लोग इस बात पर जोर देते हैं कि इज़राइल अपनी भूमि छोड़ दे, क्योंकि यहूदियों का अब उस पर अधिकार नहीं है। हम अगले सप्ताह अध्याय 34 शुरू करेंगे।